5. अभिव्यक्ति के प्रसाधन। अपनी अनुभूतियों को अभिव्यक्त करने के लिए कवि को भाषा का माध्यम ग्रहण करना पड़ता है। कभी वे अनुभूतियाँ इतनी सशक्त होती हैं कि वाणी के माध्यम से अपने आप फूट पड़ती हैं और कला के समस्त उपकरण अनायास आ जुटते हैं। कभी यह भी होता है कि कला के पूर्व निश्चित उपादान अनुभूतियों अथवा संवेगों के प्रखर प्रवाह को संभाल नहीं पाते, वे स्वयं उसमें बह कर बिखर जाते हैं, किंतु अनुभूतियाँ अपना नया आकार ग्रहण कर लेती हैं। ऐसा प्रायः रोमांटिक कवियों के साथ होता है। इसलिए रोमांटिक कवियों ने परंपरागत बंधनों में बंधना कभी स्वीकार नहीं किया, किंतु एक विशेष रूपाकार को स्वीकार कर चलने वाले कवि अपेक्षाकृत अधिक सचेत होते हैं। फलस्वरूप उन्हें कलात्मक निर्मित का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। बिहारी में जो कलात्मक सफाई, काट छांट, साज सज्जा दिखाई देती है, वह उनकी सजगता और सतर्कता का परिचायक है। निराकार अनुभूतियों को आकार देने के लिए कवि उनका सम्मूर्तन करता है, अर्थात उन्हें चित्र रूप में प्रस्तुत करता है। इस सम्मूर्तन के लिए वह नपी तुली रेखाओं, आवश्यक रंगों, समुचित परिप्रेक्ष्य का पूरा ध्यान रखता है। काव्यगत सम्मूर्तन कोष्ठ में इमेज बाह्याकार का अनुकरण नहीं होता, वह मुख्यतः कवि की कल्पना और अनुभूतियों से निर्मित होता है। बाह्य जगत के रूप विन्यास से प्रभावित होकर कवि जब उसे भाषा में उतारने का प्रयास करता है, तो उसे स्वतः नए सौंदर्य बोधात्मक संदर्भ मिल जाते हैं, जो विषय और भावों को एक प्रतीकात्मक अर्थ भी प्रदान करते हैं। सम्मूर्तन की कोशगत मनोवैज्ञानिक परिभाषा है, इमेज इज अ रिवाइवल रिप्रोडक्शन बाय मेमोरी इन दिस माइंड ऑफ सम सेंसस एक्सपीरियंस undergone in the past, including the visual, auditive, tactile and other impressions associated with it. Ronald Peacock, The Art of Drama, पृष्ठ संख्या 96। अर्थात भूतकाल के चाक्षुष श्रवणात्मक संस्पर्शात्मक तथा अन्य अनेक प्रभावों के संयोग से जिन स्मृत्यात्मक अनुभूतियों को पुनः स्थापित किया जाता है, उन्हें सम्मूर्तन की संज्ञा दी जाती है। पर कला में बाह्य जगत से गृहित भूतकालीन स्मृतियों का पुनः सृजन होता है। इसी से तो कहा जाता है कि कला प्रकृति के अभावों की पूर्णता है। इस पुनः सृजन में अनेक प्रकार के सम्मूर्तनों, चाक्षुष श्रवणात्मक संस्पर्शात्मक आदि को आवश्यकता अनुसार सम्मिश्रित कर लिया जाता है। इनके सुंदर और औचित्यपूर्ण सम्मिश्रण से सम्मूर्तनों की प्रभाव उत्पादन क्षमता बहुत बढ़ जाती है। रूप, रस, गंध, स्पर्श सभी का समावेश काव्य को अत्यधिक उदात्त बना देता है। आश्रय और आलंबन की अनेकानेक चेष्टाओं और अनुभवों का चित्र सम्मूर्तन विधान के ही अंतर्गत आएगा। साधारणतः काव्य चित्रों को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है, लक्षित चित्र श्रेणी डायरेक्ट इमेजरी और उपलक्षित चित्र श्रेणी फिगरेटिव इमेजरी। मुख्यतया बाह्य रेखाओं पर आधारित रहने के कारण लक्षित चित्रों को रेखाचित्र की अभिधा दी जा सकती है। रेखाचित्रों में आलंबन के रूप, सौंदर्य और उसकी चेष्टाओं आदि को अंकित किया जाता है। काव्य में उपलक्षित चित्रों को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। इन चित्रों में कवि अपने घनीभूत भावों को अप्रस्तुतों के सादृश्य विधान द्वारा बहुत सरस और मार्मिक ढंग से अभिव्यक्त करता है। इनके अतिरिक्त विशेषणों और शब्द ध्वनियों से भी भावों का सम्मूर्तन किया जाता है। यहाँ पर हम विशेषणों और शब्दावलियों पर आधारित सम्मूर्तनों की विवेचना करेंगे। इसके पश्चात लक्षित तथा उपलक्षित चित्रों का विश्लेषण किया जाएगा। भावोद्दीपन में उपयुक्त और चित्रोपम विशेषणों का चयन काव्य शिल्प का विशिष्ट उपकार है। सामान्य विशेषण बहुत कुछ अस्पष्ट और अमूर्त रहने के कारण हमारी भावना को आकार नहीं दे पाते। काव्योचित विशेषण इंद्रिय गोचर मूर्त रूप की सृष्टि में अधिक समर्थ होते हैं। वे स्पष्ट रूप से विशेष क्रिया अर्थ या रुचि का द्योतन करते हैं। ये अपने आप में विशेष के व्यापार नहीं हैं। इनके मूल में कवि का अपना दृष्टिकोण भी निहित है। वस्तु के प्रति अपनी भावात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए ही विशेषण का चुनाव किया जा सकता है। उसका पर्यायवाची विशेषण कवि का अभिप्रेत अर्थ नहीं दे सकता। इस तरह के उपयुक्त विशेषणों के चुनाव में बिहारी बेजोड़ हैं। नीचे कुछ विशेषणों के उदाहरण दिए जाते हैं जिनका चुनाव बिहारी बोधनी के आधार पर किया गया है। बंक विलोकन दोहा नंबर 46, अनियारे नयन दोहा 86, अहेरी नयन दोहा 127, ललचौही चखन दोहा 236, लगौहे नयन दोहा 403, अलसौहे नयन दोहा 411, तिलौछे नयन दोहा 425, निगोड़े नयन दोहा 458, उतंग खरे उरोजन दोहा 569, सुरंग कुसुम्भी चुनरी दोहा 218। बिहारी ने आँखों के लिए प्रायः एक ही विशेषण प्रयोग किया है। ऐसा करने के मूल में दो कारण दिखाई पड़ते हैं। एक तो बिहारी सजग कलाकार होने के नाते शब्दों का खूब जानबूझकर प्रयोग करते हैं। दूसरे, उनके दोहों की संकीर्ण सीमा में बहुत से विशेषण आ भी नहीं सकते थे। आकार मूलक विशेषण बिहारी में कम ही मिलेंगे। इनके विशेषणों को क्रियामूलक फंक्शनल कह सकते हैं। अपने विशेष्यों के स्वभाव या क्रिया को अंकित करने के लिए उन्होंने क्रिया विशेषणों का प्रयोग अधिक किया है, पर इन विशेषणों के मूल में बिहारी की अपनी मनोवृत्ति भी अनुस्यूत है। ललचौहे, लगौहे, अलसौहे आदि विशेषण विशेष्य के विशेष स्वभाव के साथ ही यह भी सूचित करते हैं कि बिहारी का प्रेम मुख्यतः क्रीड़ात्मक था। घन आनंद के विशेषण बिहारी के विशेषणों से सर्वथा भिन्न हैं। त्रिषित चखन अखियाँ दुखदाई में कवि की मनोदशा का व्यथापूर्ण चित्र अंकित हुआ है। मुक्तकों में प्रायः यह देखा जाता है कि परिस्थिति विशेष में आश्रय की कल्पना करनी पड़ती है। विशेषणों में जिस चित्रोपमता का विधान किया जाता है वह बहुत कुछ आश्रय के दृष्टिकोण का, इसे कवि का दृष्टिकोण भी कहा जा सकता है, परिचायक होता है। ध्वनि चित्र परिवेश निर्माण के निमित्त काव्य में ध्वनि चित्रों का विशेष महत्व है। कविता और कथा साहित्य में ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा उत्तेजनात्मक प्रतिध्वनियाँ पैदा की जाती हैं। काव्य में प्रतिध्वनियाँ मूलतः संवेगों पर चोट करती हैं और कथा साहित्य में बाह्य यथार्थ का बोध कराती हैं। कविता में इनकी गूंज का महत्व है तो कथा साहित्य में इनकी चित्रात्मक शक्ति का। रीतकालीन कवियों ने प्रायः तीन प्रकार की शब्द ध्वनियों का प्रयोग किया है, रणनात्मक, अनुकरणात्मक और व्यंजक। प्रथम शब्द ध्वनि सर्वाधिक मुखर और सबसे कम व्यंजक है। दूसरे स्थित पहली और तीसरी की मध्यवर्तिनी है। रति के विशिष्ट प्रसंगों में श्रुति मधुर ध्वनियों की रणनात्मक शोभा देखिए। झांझरियां झनकैनी खरी झनकैंगी चूरी तनको तन तोरे दास। दो, झिल्लिनी लो झहनाई के किंकिन बोलने सुखी सुख को सुख दैनी यो बिछियान बजावत बाल मराल के बालनी ज्योम रेग नैनी तोष। पर बिहारी की रणनात्मक ध्वनियाँ इतना शोर नहीं मचाती, वे अपेक्षाकृत संयमित और व्यंजकतापूर्ण हैं। एक, छकी रसाल सौरभ सने मधुर माधुरी गंध ठौर ठौर झौरत झपत भौर भौर मधु अंध। दो, रनित भृंग घंटावली झरत दान मधुनीर मंद मंद आवत चलेव कुंजर कुंज समीर। झौरत झपत और झौर झौर से भौरों का पागल होकर पुष्प गंध की और आकृष्ट होना, दौड़ना, गिर पड़ना बहुत ही अच्छी तरह व्यंजित हो उठता है। इस प्रकार दोहे में रनित और घंटावली शब्द भी ध्वन्यात्मक हैं जो एक परिवेश विशेष का निर्माण करने में पूर्ण समर्थ हैं। इस माध्यम से संस्कृत के कवियों ने भी बहुत सुंदर वातावरण निर्माण किए हैं। भवभूति का एक उदाहरण देखिए, गुंजत कुंज कुटी कौशिक घटा खुदकार सम्मेलित क्रंद फेर वचंड धात कृति फृत प्राग भार भीमस तटय अंतःकिरण करंकर परतरत संरोधिकूलम कश श्रोतो निर्गम घोष घर घर वा पारेश्म शानम सरित। इसमें शमशान का वातावरण अपनी पूर्ण भयंकरता में चित्रित हो उठा है। छायावादी कवियों में निराला और पंत ने ध्वन्यात्मक शब्दों से रसात्मक वातावरण का बहुत सुंदर निर्माण किया है। अनुकरणात्मक शब्द ध्वनि का एक उदाहरण देखिए, रुक्यो सांकरे कुंज मग करत झांझी झुकरात मंद मंद मारुत तुरंग खूंदनि आवत जात। झांझ और झुकरात शब्द शरारत और झोंके का व्यंजनात्मक चित्र उपस्थित करते हैं। तीसरे प्रकार में वे छंद हैं जो नाद तत्व एलिमेंट ऑफ साउंड द्वारा अभिव्यक्त होते हैं। उदाहरणार्थ, लह लहाति तन तरुनई चली लगी लौ लफिजाय लगय लंक लोयन भरी लोयन लेत लगाय। हरी भरी खेती को हवा और धूप में हिलते डोलते और चमकते देखकर लोग कहते हैं कि खेत खूब लहलहा रहे हैं। तरुणाई के प्रसंग में इसके मुख्यार्थ का बोध होता है और लक्षणा के सहारे इससे स्वस्थ प्रसन्न और मादक यौवन की अर्थ प्रतीत होती है। इस तरह देव के उमड्यो परत रूप में लक्षार्थ द्वारा रूपाधिक्य का इंद्रिय ग्राही चित्र उपस्थित किया गया है। काव्य सौंदर्य की दृष्टि से ऐसे शब्दों का विशेष महत्व है। रीति कवियों ने अपने काव्य को अनेक प्रकार से अलंकृत किया है। अलंकृति को अलग करके इन काव्यों का अध्ययन बहुत कुछ अधूरा रह जाएगा। इसके लिए कवियों को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, वह युग का धर्म था। इस अलंकृति को उस समय के किसी भी सांस्कृतिक क्षेत्र में देखा जा सकता है, चित्र में, वास्तुकला में, संगीत में। यदि यह कहा जाए कि उस समय का सारा जीवन अलंकृतमय हो चुका था तो कोई अत्युक्ति न होगी। अतः यह स्वाभाविक था कि जीवन की सहज स्फूर्ति खो जाती। काव्य के लिए भी यही सत्य है। इस अलंकृति का परिणाम यह हुआ कि रीति काव्यों में अनेक मनोरम चित्रों की अवतारणा हो गई। यूं तो चित्रमयता भाषा का सहज धर्म है, पर चित्रों की इतनी बहुलता शायद ही और कहीं दिखाई पड़े। चित्रों के अतिरिक्त ध्वनि और अलंकार का समावेश भी प्रसाधन के रूप में इन्होंने किया है। इसलिए बिहारी के काव्य प्रसाधन का विवेचन करने के लिए हमें उन्हीं के उपकरणों का ध्यान रखना होगा। चित्र योजना, पीछे लक्षित चित्र योजना डायरेक्ट इमेजरी और उपलक्षित चित्र योजना फिगरेटिव इमेजरी की बात कर आए हैं। लक्षित चित्र योजना वह है जो सहज ढंग से लक्षित हो जाती है, इसमें प्रधानतया रेखा और रंगों का प्रयोग होता है। उपलक्षित चित्र योजना का संबंध सादृश्य मूलक अलंकारों से है, वह अपेक्षाकृत अधिक गूढ़ और व्यंजक होती है।